जब सानवी घर पहुंची, दरवाजा खोलते ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई। कृति और रिया सोफे पर बैठी थी। सानवी का चेहरा देखकर दोनों समझ गए कि कोई बुरी खबर है। कपड़े बदलकर सानवी बिस्तर पर लेट गई। ना खाना खाया ना पानी पिया, बस छत देखते हुए चुपचाप लेटी रही। आंखें बार बार भर आतीं। कृति ऑफिस चली गई थी, लेकिन रिया घर पर ही थी। वो सानवी के कमरे में कई बार जाकर उसके पास बैठती, पर सानवी बहुत टूट चुकी थी। रिया ने धीरे से कहा, सानवी तुम ऐसे क्यों चुप हो? अंदर से बात करो ना, तुम किसी को बताओगी भी नहीं तो हेल्प कैसे मिलेगी? सानवी ने करवट बदली, चेहरे पर थकान और उदासी साफ थी। हेल्प? किसकी हेल्प? किससे बात करूं रिया? रिया तुरंत बोली, तुम इंद्र से बात कर सकती हो, वो मदद कर सकता है। सानवी ने झट से इनकार कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, और सुन लो, मैं इंद्र के सामने तो कभी कोई बात नहीं करूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हेल्प तो तुम्हारा आर्यन भी करेगा, ये बात तुम खुद जानती हो। सानवी उठकर बैठ गई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, मगर आवाज अब भी शांत थी। रिया, मैंने पहले भी कहा है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी मेहनत से चीजें हासिल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर गर्व से कहूँ, ये मैंने खुद किया है। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अकेले सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता सानवी। सानवी ने हल्का सा सिर हिलाया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आसान है या मुश्किल, अभी नहीं हुआ तो फिर सही, मैं नौकरी ढूंढ लूंगी, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लूंगी, जो मिलेगा कर लूंगी, मैं हार नहीं मानने वाली। रिया ने उसे गले लगा लिया, तुम बहुत स्ट्रांग हो सानवी, लेकिन अपना दिल इतना मत दुखाया करो। सानवी ने तभी पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, दिल दुखता तो है लेकिन रुकूंगी नहीं। अगले दिन सुबह से ही कृति कहीं बाहर नहीं गई थी। पूरा घर सन्नाटा सा था, बस हल्की हल्की आवाजें घर के अंदर गूंज रही थीं। कृति घर पर थी और सानवी भी कई बार उसे कह चुकी थी कि काम पर जाने के लिए निकलना चाहिए, समय हो रहा है, लेट मत हो जाओ, लेकिन कृति ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कृति, तुम कहीं नहीं जा रही, इतनी देर हो रही है? कोई बात नहीं, वो चली जाएगी, रिया ने सानवी को टोका। क्या तुम किसी और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने वाली हो? रिया ने सानवी से थोड़ी चिंता के साथ पूछा। नहीं, अभी तक कुछ सोच नहीं पाया, पता नहीं क्या होगा। तभी दरवाजे पर अचानक कोई दस्तक हुई। कौन आया है? रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही कृति के पापा सुरेश साहब वहां खड़े थे। देखो कौन आया है, रिया ने कहा। कृति बिना सोचे उन्हें गले लग गई। पापा, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। सानवी भी उठकर उनके पापा के गले लग गई। आपने तो इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया, कम से कम मुझे बता देते तो अच्छा होता। सुरेश जी मुस्कुराए। कृति को पता था कि मैं आने वाला था। कृति और सानवी दोनों ने अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। चाय बनी, कुछ हल्का नाश्ता रखा और फिर सभी एक साथ टेबल पर बैठ गए। छोटे छोटे गपशप और बातें चलने लगी। आप मम्मी को साथ क्यों नहीं लाए, उन्हें भी साथ लाते? सानवी ने पूछा। सुरेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, उसे आज थोड़ा काम था। सानवी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए पापा? सुरेश जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, कल रात ट्रेन पकड़ ली थी, तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए लोन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, मुझे कृति ने बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही मदद कर दी जाए, ये पैसा मैंने तुम्हारे लिए लाया है। सुरेश जी ने अपना बैग उठाया और धीरे से सानवी के सामने रखा। सानवी चौंक गई, लेकिन पापा ये पैसे कहाँ से आए, क्या ये आपके ही पैसे हैं? सुरेश जी ने गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, ये पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचाए थे, सोचा था कि शादी में खर्च करूंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सपना, तुम्हारा रेस्टोरेंट मुझे उससे ज्यादा जरूरी लगा, इतना पैसा ही चाहिए था ना तुम्हें? सानवी की आंखों में आंसू आ गए। सानवी ने धीरे से कहा, हाँ पापा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरा रेस्टोरेंट नहीं चला तो ये पैसा भी डूब जाएगा, मुझे डर है। सुरेश जी ने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, बेटा फिक्र मत करो, जरूर चलेगा। बेटा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, गांव में हमारी जमीन है और नौकरी के दौरान जो कुछ मैंने इकट्ठा किया वही है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना काम है, तुम्हारा खर्चा तुम दोनों उठाते हो, मैं खुश हूँ कि ये पैसा तुम्हारे काम आएगा, तुम दोनों ही तो मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी भेज सकता हूँ। अब बेटा, तुम दोनों आराम से अपने रेस्टोरेंट का काम संभालो, चिंता की कोई बात नहीं है। मगर सानवी के लिए सिर्फ यही एक सरप्राइज नहीं था कि उसके पापा उसके लिए पैसे लेकर आए थे, उसके लिए अभी और भी सरप्राइज बाकी थे। सानवी ने तुरंत कैमल को फोन किया, हेलो कैमल, अब सब ठीक हो गया है, पैसों का इंतजाम हो गया है और रेस्टोरेंट की डील भी अब फाइनल होने वाली है। कैमल ने उत्सुकता से पूछा, अरे सच में ये सब कैसे हुआ? थोड़ी ही देर बाद सानवी और कैमल मिस्टर मेहरा के रेस्टोरेंट में पहुंचे ताकि डील को फाइनल किया जा सके। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से तैयार था। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये हुआ कि अब 25-25% की हिस्सेदारी आप दोनों के पास है और मेरी जो 50% की हिस्सेदारी थी उसे किसी ने खरीद लिया है। इसका मतलब है कि अब आपका रेस्टोरेंट एक नए पार्टनर के साथ काम करने वाला है।
कैमल और सानवी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्का आश्चर्य और उत्सुकता झलक रही थी। सानवी ने धीरे से कहा, तो मतलब हमारा नया पार्टनर अब आने वाला है? बहरा ने हंसते हुए कहा, हाँ बस वो अभी आ ही रहा है, तुम दोनों को उससे मिलना पड़ेगा। कैमल और सानवी दोनों अब पूरी तरह उत्साहित और थोड़े उत्सुक थे। आज विक्रांत ने आलिया को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। जैसे ही आलिया रेस्टोरेंट पहुंची, उसने देखा कि विक्रांत पहले से ही वहां मौजूद था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? आलिया ने सीधा सवाल किया और विक्रांत की ओर देखते हुए कहा। विक्रांत ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, बैठो आलिया, मैं तुमसे सीधे सीधी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। आलिया ने थोड़ी झिझक के साथ बैठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सीधे सीधी क्या कहना है? विक्रांत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता है ना कि इंद्र सानवी से प्यार करता है और सानवी आर्यन से प्यार करती है, सही कहा ना? आलिया थोड़ी चौंकी और बोली, ठीक है, तो इसका मुझसे क्या मतलब? विक्रांत ने नजरें मिलाते हुए कहा, मतलब ये है कि अगर सानवी आर्यन के पास चली जाती है तो तुम्हें इंद्र मिल जाएगा। मेरे पास एक ऐसा राज है जिस वजह से इंद्र तुम्हें मिल सकता है। आलिया ने थोड़े गुस्से और उलझन के साथ कहा, तुम मेरे लिए क्यों कुछ करोगी? विक्रांत ने शांत होकर कहा, सही कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मेरी बीवी के दिल में अभी भी आर्यन है और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि अगर सानवी आर्यन की जिंदगी में आ जाती है तो मेरी बीवी सिर्फ मेरी होगी। आलिया उसकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। विक्रांत ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें वो राज बता रहा हूँ जिस वजह से सानवी आर्यन से दूर जा रही है, ध्यान से सुनो। आलिया उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। तुम्हें पता है ना कि हमें जय कस्टडी कैसे मिली? विक्रांत ने धीमे और स्पष्ट शब्दों में कहा। ये एक डॉक्यूमेंट की वजह से हुआ जिसकी तस्वीर सानवी की बहन कृति ने खींचकर हमें दी थी। उसी वजह से हम जीत गए और जय की कस्टडी हमें मिल गई। आलिया कुछ पल के लिए चुप रही। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्की चिंता झलक रही थी। विक्रांत के बताए हुआ राज से सभी की जिंदगी पर कैसे असर पड़ेगा? आखिर कौन है सानवी का नया पार्टनर जिसने मिस्टर मेहता के शेयर खरीदे हैं? अब कीर्ति का राज राज नहीं रहेगा। जब आर्यन तक ये बात पहुंचेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।